بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري. یہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھول سے کھا لیا پی لیا تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا: من نسی وہو صائم، جو بھول گیا اپنے روزے کو، فاکل، بھول میں اس نے کھا لیا پی لیا، اپنے روزے کو مکمل کر لے، اپنے روزے کو توڑے نہیں. کیوں؟ اطعمہ اللہ وسقا، اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے نا. بھول میں اگر کھا لیا، سمجھو کس نے کھلایا، اللہ نے پلایا کھلایا. دوسرا مسئلہ ہے، روزے میں خون کو ٹیسٹ کرانا، خون ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، خون کی بوتل نکالتے ہوئے ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ کیا ہے، کیسا ہے اس کا مسئلہ ہے. اس بارے میں ولا باس، فتوی عالمگیری ہے، ولا باس بالحجامہ ان امن علی نفس الضعف اما اذا خاف فانه یکرہ. خون نکالنے کے بعد دیکھا جائے گا، یعنی خون نکالنے سے آدمی کی حالت دیکھی جائے گی کہ اگر خون نکالا جائے گا تو کمزور ہو جائے گا کہ نہیں. روزے کی حالت میں اگر ایسا لگے کہ میں خون نکالنے سے یعنی نکلوانے سے میں کمزور ہو جاؤں تو مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے، روزہ ٹوٹے گا نہیں. تو روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزہ فاسد ہوتا ہے اندر جانے سے، باہر نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور خون نکلتا ہے کدھر ہے؟ باہر ہے. لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب آ جائے، کہ آدمی روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم، کپنگ کرنے والے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، کپنگ کرانے والے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. یہ حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم. پھر دوسری طرف دیکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کپنگ کروایا ہے. ایک طرف مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ افطر، افطار کر دیا، حاجم اور محجوم دونوں نے، جو کپنگ کرتا ہے اس نے بھی اور جو کپنگ کرواتا اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. اور دوسری طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے روزے کی حالت میں کپنگ کروانا اور صحابہ کرام کا آپ کا کپنگ کرنا ثابت ہے. تو دونوں حدیث کو جمع کر کے علماء کرام نے فتویٰ یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں وہ کپ والا کپنگ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے، کپ رکھتے ہیں پھر اس کی یعنی وہ پھر اس کے بعد اس پر وہ لگاتے ہیں اور پھر خون کو نکالتے ہیں، اس قسم کا کپنگ نہیں تھا. اس زمانے میں کپنگ کیسا تھا، سوراخ کرتے تھے اور ایک پائپ جیسی چیز ہوتی ہے اس کو رکھتے تھے اور اپنے منہ سے کھینچتے تھے، خون کو کھینچتے تھے بدن سے، یہ کپنگ ہے. آج بھی کرتے ہیں کچھ عرب لوگ، جو اوریجنل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سوراخ کرتے ہیں، اس کی جگہ ہوتی ہے، بعض جگہ ہوتی ہے، پوائنٹس ہوتے ہیں، اس پوائنٹس پر وہ تھوڑا سوراخ کر کے پھر خون کو چوس. اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی خون کو چوس کر نکالتا ہے تو خطرہ ہے کہاں، خون کا اندر چلے جانے کا. اور ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں کھینچ کے خون نکالنا، تو روزے دار بھی جس کو کپنگ کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. ہوتا ہے بہت سی مرتبہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ نکالا کہ روزے کی حالت میں کپنگ کرنا جائز ہے، کپنگ کرانا بھی جائز ہے، لیکن اگر خطرہ ہو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہے، خون کے اندر چلے جانے کا یا آدمی کے کمزور ہو جانے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے، دل کے جو مریض ہوتے ہیں نا، دل کے، ہارٹ کے جو مریض ہوتے ہیں، ان کو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، یہاں تو نہیں پتا ہمارے ہندوستان میں، وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، یہاں بھی رکھتے ہوں گے شاید، زبان کے نیچے، ہاں زبان کے نیچے رکھتے ہیں. آئے روزے کی حالت میں اگر اس کو یہ ٹیبلٹ رکھی گئی زبان کے نیچے، تو کیا حکم ہے، اس کا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ये दिल की बीमारियों में जो गोरी जबान के नीचे रखी जाती है वो वहीं पर जज्ब होकर खत्म हो जाती है, वहीं पर पिघल जाती है। ऐसी सूरत में उससे रोजा नहीं टूटता है। रोजा टूटेगा गले के अंदर से नीचे चले जाए तो, गले से, और ये तो मुंह के अंदर ही है, समझ में आई बात। जैसे अगर किसी आदमी ने सहरी खाई, खाने के बाद गोश्त खाया उसने माशाल्लाह, तो अब जाहिर बात है कि उसको दांतों में वो गोश्त के टुकड़े लगे हुए हैं, अगर उसने साफ नहीं किया, फजर की नमाज के बाद देखा तो एक टुकड़ा निकला, अब उसने उसको अंदर में निगल लिया बजाय ठूकने के, तो फिर रोजा टूट जाएगा, जाहिर बात है। यही हालत नमाज में भी है कि आपने इफ्तारी की और माशाल्लाह अच्छे पकोड़े सब कुछ खा लिए हैं और कुल्ली नहीं की, अब नमाज में अपने नमाज शुरू कर दी, नमाज की हालत में आप अपनी जबान से उसको निकाले, वो निकल गई वो चीज और चने के बराबर है और अंदर में चली गई, तो नमाज टूट जाएगी। नमाज की हालत में खाना ममनू है, समझ में आई बात। भूल से हो तो अलग मसला है, लेकिन एक ने निकाली है और उसको क्या है सोलो कर लिया, उसको जबान हाथ से ले लेना चाहिए, एक हाथ से, चने से छोटी हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं। यही हालत रोजे के अंदर में भी है और यही हालत दिल की बीमारी के लिए भी है कि अगर जबान के नीचे अगर कोई दवा रखी है और वहीं पिघल गई, वहीं तहलील हो गई, खत्म हो गई, आगे नहीं गई, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा। अगर दवा के अज्जा थूक के जरिए से मिलकर हलक के रास्ते से नीचे उतर जाए तो रोजा टूट जाएगा। वजाहत मैंने कर दी है, थूक के साथ अगर उसको आदमी उसको निगले और फिर थूक को अंदर ले जाए, दवा पिघल गई बस थूक दो भाई खत्म हो गया, अंदर थूक को ले जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि बाज मरतबा थूक के साथ उसका कुछ असर बाकी होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आदमी वो दवा पिघल गई थूक के साथ जबान के नीचे, फिर बाद में थूक दिया, दवा तो पिघल गई है ना, लेकिन उसको थूक दिया अपने वैसे ही, तो ऐसे सूरत में वो दवा अंदर नहीं गई। ये है अल्लामा इब्न आबिदीन ने इस फतवे को, इब्न आबिदीन शामी ने अपने फतवा शामी में इस मसले को लिखा है। कतामी अदविया लव दक का दवा फवजद तुमा फी हलकी ही अफतारा वलाकिन व रेहल इजा वजद फी हलक ही लम यफ्तार, अगर हलक में नहीं गया है तो इस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा, उसका रोजा हो जाएगा। अब रोजे के अंदर में इंजेक्शन लेना, टिक्का लेना, चिकन टिक्का नहीं, सुनना ही बात, रोजे की हालत में इंजेक्शन लेने का मसला क्या है, इसमें अगर रोजे के दौरान वैक्सीन ले लो, इंजेक्शन लगवाया, जो भी हो, उससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा टूटता नहीं। लेकिन ये लेकिन वाला मसला टेढ़ा है, लेकिन अगर ऐसा इंजेक्शन हो कि वो दवा सीधी दिमाग के जरिए से या यहां लगाए के पेट में जाए, इंसान के जाने के दो ही रास्ते, दिमाग से सीधा या फिर यहां पेट, पेट के ऊपर इंजेक्शन लगा दिया अंदर में कि वो डायरेक्ट कहां चली गई दवा, ऐसा इंजेक्शन हो तो डायरेक्ट दवा पहुंचाई गई अंदर पेट में, तो वरना नॉर्मली कहीं भी इंजेक्शन लो रोजा टूटता नहीं है। बात समझ रहे हो? नहीं नहीं आगे आ रहा है, नहीं टूटता रोजा, नहीं टूटता। जो चीज डायरेक्ट पेट में पहुंचाई जाए, मसला याद रखो, दिमाग के जरिए से या सीधे यहां पेट के ऊपर डायरेक्ट पेट के अंदर पहुंचाई जाए तो ही रोजा टूटेगा, वरना नहीं। आगे मसला आ रहा है, सुनिए, रोजे में ग्लूकोज चढ़वाना, वो ग्लूकोज की बोतल होती है ना, वो चढ़वाते, रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता, समझ में आई बात। ये फतावा तातार खानिया का मसला, अक्सर المشايخ اعتبر الوصول الى الجوف في الجائفه والامط ان عرف ان الباس وصرف الى الجوف يبصر الصوم بالاتفاق। हां, सीधा यहां रखा है पेट में, खाना गया वो ग्लूकोज तो फिर मैंने बताया जैसे इंजेक्शन में है, लेकिन अगर कहीं आदमी ने ग्लूकोज चढ़ाते हैं जैसे यहाँ है ड्रिप चढ़ा दिया कहीं भी और उसको ड्रिप की हकीकत में ज़रूरत है, बस तो ऐसे ही लेटे रहते हैं ड्रिप्स तरट्टा कर लेने के लिए, तो वो नहीं चलेगा। नहीं बात, उसको हकीकत में ड्रिप्स की ज़रूरत है। तो रोजे की हालत में, हसन भाई सो रहे हैं, रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग, वही जवाब, बराह रास्त दिमाग और मादे तक नहीं पहुंचती बल्कि रगों के वास्ते से जाती है। ये रग वाला मसला, कहां से जाती है वो, रगों के वास्ते से जाती है। लेकिन बिला उजर ऐसा नहीं करना चाहिए, मकरूह है। जैसे मैंने अभी इशारा किया कि अगर किसी ने ग्लूकोज ली ताकत के लिए तो उसको कोई उजर है नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज, यू डोंट हैव टू टेक दैट। लेकिन अगर बीमार रियली उसको ग्लूकोज की जरूरत है ड्रिप्स की, कुछ रोजा हो जाएगा, इसका रोजा टूटेगा नहीं। ये तो इंजेक्शन से बड़ा है ना, फिर भी रोजा टूटता। अब रोजे की हालत में डायलिसिस कराना, ये सारे मसले बहुत इंपॉर्टेंट से हैं। रोजे की हालत में डायलिसिस जो करते हैं, और डायलिसिस में क्या होता है, ये गुर्दे की धुलाई होती है ना, खून अंदर बाहर जो किया जाता है उसके लिए। रोजे की हालत में डायलिसिस के अमल से रोजा नहीं टूटता, डायलिसिस से भी रोजा टूटता नहीं, क्योंकि उस अमल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खून की सफाई से है, उसके खून को क्या किया जाता है, सफाई। बराह रास्त पेट में जौफ मादा जिसको कहते हैं, जौफ मादा यानी जहां खाना जाता है, जौफ मादा उसको बराह रास्त जौफ मादा में उसके सबब कोई चीज दाखिल नहीं हुई, तो उस हिसाब से लायब सुदू रोजा फासिद नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है ना, इंजेक्शन, ग्लूकोज, डायलिसिस, अब आ रहा है ऑक्सीजन, कोविड पेशेंट है ना, ऑक्सीजन की इसको जरूरत है आईसीयू में, और रोजेदार उसको अचानक ले गए, ऑक्सीजन दिया जाएगा। रोजे में अगर ऑक्सीजन के जरिए सांस लिया जाए तो उससे भी रोजा फासिद नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्यों, इसलिए कि ये फतवा की किताब में लिखा है, जैसे मैंने कहा हमारे मुफत्तरात सियाम में रोजे के तोड़ने वाले की चीजें डॉक्टर अहमद खलील अहमद साहब, इसी तरह आयने रमजान में मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कौसर मदनी ने इन तमाम फतवे को लिखा है कि ऑक्सीजन महज एक साफ सुथरी हवा है। ऑक्सीजन क्या, उसको एक क्लियर, उसको एयर दी जाती है, उसका बदन में जाना मुफसिर सौम नहीं है, रोजे को तोड़ने वाला नहीं है। चार मसले जो इंपॉर्टेंट थे, एक तो रोजे में इंजेक्शन टिक्का लेना जायज है। अरे भाई आप लेटर हो, मैंने बताया ना, तो मेरा मेरे ऊपर है ना सब, है ना, तो रोजा टूटता नहीं है। नंबर दो, रोजे में ग्लूकोज चढ़ाने से भी रोजा टूटता नहीं है, लेकिन मैंने उसमें एहतियात बयान किया है, वो भी याद रखना, रोजे में डायलिसिस से रोजा टूटता नहीं है, रोजे में ऑक्सीजन लेने से भी रोजा टूटता नहीं है। मसला वाज़ेह हो गया, हवाला भी दे दिया मेरे,
इंसुलिन जो पेट में लगाते हैं,
ये बाज दवा सूंघी जाती है, होम्योपैथिक दवा सूंघाते हैं उसको, बाज होम्योपैथिक दवाएं सिर्फ सूंघी जाती है, उनको खाया पिया नहीं जाता, न पिया जाता है न खाया जाता है, सूंघने के साथ उनका कोई जूस बदन के अंदर मुंतकिल नहीं होता। जैसे आपने लुकमा लिया तो वो तो जूस कहाँ गया, बदन के अंदर, या पानी लिया तो पानी अंदर जा रहा, या सूंघने से कोई जूस उसका वो बदन के अंदर मुंतकिल पेट में नहीं जाता, ऐसी दवाएं सूंघने से या खारजी इस्तेमाल से लगाने से रोजा फासिद नहीं होता। यही बात समझ में, अच्छा, मैदे की टेस्ट के लिए, ये मैदे में कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, हलक में एक नलकी डालते हैं, पाइप डालते हैं अंदर में चेक करने के लिए, तो रोजे की हालत में मादे के अंदर में पेट के अंदर में टेस्ट करने के लिए हलक में से यहां से अंदर से मुंह से कोई चीज डाली है, फिर कैमरा से वो देखते हैं तो ये कैसा है। अगर मादे वगैरह की टेस्ट के लिए हलक यहां से डालेंगे या तो नाक से डालेंगे, दो रास्ते हैं। हलक या नाक के रास्ते से दूरबीन वाली जो नलकी डाली गई जिसमें कोई दवा नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें कोई दवा है या चिकनाहट, बाज मरतबा चिकनाहट लगाते हैं ताकि बराबर सीढ़ी चली जाए, कोई चिकनाहट भी ना लगाई हो और उसमें कोई दवा भी ना हो उस नलकी में, और फिर डाली जाए उसका एक सिरा बाहर है एक अंदर गया है, पूरी नलकी अंदर डाली गई है, तो उस नलकी के सिर्फ डालने से रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर उसके साथ कोई दवा या कोई चिकनाहट डाली है तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। अच्छा, दांत से खून निकला मगर अंदर नहीं गया, दांत से खून निकलकर पेट में न जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता। ऑटोमेटिक वॉमिट हुई एक आदमी को, ऑटोमेटिक खुद ब खुद कह होना, खुद ब खुद कह आने से रोजे में कोई खराबी, अगरचे मुंह भरकर हो, पहले जमाने की तरह वो मुंह भरकर है तो रोजा टूट गया, ऐसा मसला नहीं है। क्या कह रहे हैं, बिला इख्तियार, यानी क्या कह रहे हैं, खुद ब खुद के आ जाने से भी रोजे में बिल्कुल खराबी नहीं होती है, अगरचे मुंह भरकर ही क्यों ना हो उससे रोजा नहीं टूटता। पानी से कुल्ली करने के बाद थूक को निगल जाना, क्या करते हैं, पानी से कुल्ली करते हैं उसके बाद वो थूक अंदर में जाता है, तो जाहिर बात है तो खून थूक के साथ कुछ क्या होता है, पानी के अज्जा कुछ हो। कुल्ली करने के बाद मुंह के अंदर जो पानी की तरी रहती है, तरी पानी नहीं रहता, पानी की कुछ तरी रह जाती, जैसे आपने हाथ धोया तो हाथ के ऊपर तरी है तो तरी रह जाती है, वेट जिसको कहते हैं, उसको थूक के साथ निगल गया तो रोजे में कोई खराबी नहीं होगी। कुल्ली की और पानी निकल गया तो रोजा टूट जाएगा, मसले को समझना, आधा बटर आधा क्या आधा टीटर आधा, मैं वो ऐसा काम नहीं करना भाई है, ये मुफ्ती साहब का नाम लेकर फिर उल्टा मसला बयान नहीं करना समझे। हाँ, तो कुल्ली करने के बाद मुंह में जो तरी रह जाती है थूक के साथ चली गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुल्ली की इस तरीके से पता है उसका रोजा है और इसने ऐसा घरघरा किया और पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा, इसलिए उसमें नाक में पानी डालो तो यहां से ऊपर अगर अंदर चला जाने का खतरा हो या गले में जाने का, तो ऐसी सूरत में एहतियात करनी चाहिए, इतना शिद्दत से जोर से नहीं करना चाहिए कि पानी अंदर चला जाए। रोजे की हालत में कान से जो मैल निकालते हैं, कान का मैल निकालने से भी रोजा नहीं टूटता, चाहे 50 उसने सीली सिलाई लगाई हो अंदर में निकालने के लिए, उससे रोजा नहीं टूटता। अच्छा, बहुत सी मरतबा आदमी नाक होता है ना उसको खींचता है तो वो कुछ अंदर में जो बलगम है नाक में वो फिर क्या हो जाता है, पेट में चला जाता है, इस तरह खींचता है तो कहाँ चला गया, पेट में चला गया। हालांकि उसको अगर खींच लिया तो मुंह से निकाल देना चाहिए, इसलिए आप देखना खींचते हैं तो मुंह में भी आ जाता है, लेकिन अगर उसने मुंह से बाहर निकाला अंदर चला गया कहाँ था, नाक में, और उसने जोर से खींचा तो देखो नाक यहां से वो पूरा रास्ता है पेट का, समझना ही बात। तो कह रहे हैं नाक को इतनी जोर से सरक लिया उसने कि हलक में चली गई तो अभी उसकी वजह से रोजा टूटता नहीं है। अच्छा, इसको कहते हैं लव दखल अल मखात उनफ, मखात कहते हैं वो नाक के अंदर की रीट को, मिन रास ही सुम इस तश्मा, फिर उसको पेट में, फादखल हलक आमदन, जानबूझकर अंदर दाखिल किया, लम यत्तर, उसका रोजा नहीं टूटेगा। ये एक थूक की तरह है, लिअन्नहु बिमंजिलति रेका, जैसे थूक होता आदमी जाता रहता अंदर बाहर तो उससे रोजा नहीं टूटता, इससे भी रोजा नहीं टूटता। कह हो गई उसका तो मसला मैंने बता दिया, खुद ब खुद, लेकिन के का खुद ब खुद अंदर चले जाना, यहां तक के आई अंदर चली गई, यह मसला अलग है। दूसरा, थोड़ी सी के आई फिर खुद ही हलक में लौट गई, चली गई वापस, आती है बहुत से लोगों को, यहां तक आती है फिर अंदर चली जाती है, या जानबूझकर उसको निगल लिया कसदन, तो रोजा नहीं टूटेगा, रोजा टूटेगा। अलबत्ता अगर मुंह भरकर कह हुई थी और उसको जानबूझकर लौटाया, क्या कह रहा हूं मैं, जानबूझकर लौटाया, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। रोजा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इदा का अविस्तका मिल उल फम, मुंह भरकर अवदूना आद बिनफ्सी ही औ आद, खुद ब खुद लौट गई या उसको लौटाया, औ खराजा या निकाल दी, फला फत्र अल असा, सही कॉल के मुताबिक उसका रोजा इफ्तार नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इल्ला फिल इआदा, मगर उसको क्या है, मुंह भर कर है और अंदर लौट आई, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा। रोजे में मिसवाक करना जायज है, पहले मैंने बताया था। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं पूरा दिन मिसवाक कर सकते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहां जोहर तक कर सकते हैं, जोहर के बाद से इजाजत नहीं है। कह रहे तुम अल्लाह की दी हुई जो मुंह के अंदर बदबू है, जिसको अल्लाह को मुश्क के ज्यादा पसंदीदा है, तुम उस बदबू को दूर कर रहे हो। इमाम शाफी फरमाते हैं तुम उस बदबू जो है ना, मुंह की बदबू रोजे की हालत में जो होती है ना, वो अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसंद है। तो हमारे इमाम अबू हनीफा तो पहले पैदा हुए ना, जिस दिन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का इंतकाल, उस दिन इमाम शाफी पैदा हुए हैं, उनकी पैदाइश का दिन है, इमाम साहब का इंतकाल का दिन है और उनकी पैदाइश का दिन है। इमाम साहब तो बहुत एहतियात पहलू वाले थे, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह हकीम भी थे बहुत बड़े। देखो कैसी बात बयान फरमाते हैं, फरमाया ये मुंह की बदबू अलग है दांतों की। आदमी पूरा दिन कभी सोया है, सो गया आधा का एक घंटा, या बोलता ज्यादा रहता है तो फिर मुंह में किस्म की बदबू पैदा होती है, और एक बदबू होती है पेट में भूख की वजह से आना, दोनों बदबू अलग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया ये मुंह की बदबू को दूर करने के लिए है, पेट वाली नहीं। और यहां अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ताला को वो बदबू जो इंसान भूख की वजह से रोजा रखता है, भूख से रोजा रखता है, वो बदबू उसके मुंह से आती है, तो उस बदबू को अल्लाह, वो बदबू अल्लाह के यहां मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। इमाम साहब फरमाते असर के बाद भी जब भी आदमी मिसवाक करना चाहे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोजे में आंख में दवा डालना, कल बताया था मैंने शायद, आंख में दवा, चलो ये मसला हो गया। रोजे की हालत में जरूरत के वक्त आंख में दवा डालना जायज, उससे रोजा टूटता नहीं है। अच्छा, ये कल मुझे किसी ने सवाल किया कि इतर को सूंघना रोजे की हालत में, लगा दिया सूंघता है, रोजे की हालत में इतर सूंघो, गुलाब का फूल सूंघो, या दुनिया को कोई खुशबू सूंघो, उससे रोजा टूटता नहीं है, कोई हरज नहीं है। ला यकरहुल साइम शम रायतुल मुश्क वल उद वल वर्द ला यफ्तर, चाहे गुलाब का हो चाहे जिसका भी हो। रोजे की हालत में विक्स लगाना, ये विक्स लगाते हैं ना बहुत, जांडू बाम और टाइगर बाम और सुम सब ये लगाते हैं ना दर्द के लिए, है ना, मसाज करने वाले को ज्यादा पता है। अच्छा, तो नजला हो गया किसी को और विक्स लगाता है, कभी यहां कभी यहां ऐसा लगा रहा है, ये मरहम जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं मरहम, लगाया जा सकता है, जिसकी तेज खुशबू दिमाग तक पहुंचती है ना, अगर घर रूम में एक ने लगाया तो सभी परेशान हो जाते हैं, क्या टाइगर बाम लगा दिए, है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसके इस्तेमाल से रोजा टूटता नहीं, अगर जो उसकी वो जो बू है वो दिमाग को पहुंच जाए। इसी तरह सर में तेल लगाना, बदन में तेल का मसाज करना, उसे रोजा टूटता नहीं है। अच्छा, ये नहाते नहाते कान में पानी चला गया, होता है है ना, नहाते नहाते गुसल में कान में पानी चला गया। अगर रोजेदार के कान में गुसल करते हुए या बारिश की वजह से पानी चला गया, या समंदर में या नहर में नहाते नहाते बिला इख्तियार कान में पानी चला जाए, तो उससे बिल इत्तेफाक रोजा फासिद नहीं होता, रोजा टूटता नहीं। इदा खास सलमा फदखल उजुन ला यफसुल सौमा, उसका रोजा फासिद नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर पानी डाल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं मसला बराबर सुनना भाई, जानबूझकर कान में पानी डाला तो उसमें फुकहा का इख्तिलाफ है। बास के नजदीक रोजा टूटता है, बास के नजदीक रोजा नहीं टूटता, लेकिन ज्यादातर उलमा का ख्याल यह है कि रोजा फासिद हो जाएगा, इसलिए उसे क्या है एहतियात करनी चाहिए, एहतराज करना चाहिए। सही यही कौन है। मुझे किसी ने गालिबन पहले हफ्ते में सवाल किया कि मैं सो गया फजर में खाना खा के, एहतलाम हो गया। एहतलाम आम तौर पर होता है पेट भरा हुआ खाने से, है ना। इसीलिए हकीम लोगों का कायदा यह है, आफ्टर लंच स्लीप ए वाइल और आफ्टर सप वॉक ए माइल, आफ्टर लंच स्लीप ए वाइल सुन्नत है, और आफ्टर सपा जो है वॉक ए माइल, ताकि वो खाना हजम हो जाए, रात में एहतलाम ना हो। आजकल की गिजाएं बहुत गर्म होती है, हजम नहीं हुआ तो कमजोर मादे वाले को एहतलाम हो जाता है, यानी ख्वाब में मनी निकल जाती है, गुसल वाजिब हो जाता है। तो ये एहतलाम की सूरत है, सुन्नत। वो हकीम ने बात अच्छी कही, कैलूला थोड़ी देर के लिए करना सुन्नत है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नज़दीक हजार रकात नफल पढ़ने से थोड़ी देर कैलूला करना बेहतर है, क्योंकि ये सुन्नत है। तो अगर आदमी सहरी में खाना खाया है, पेट भरा हुआ है, तो थोड़ा फजर के बाद थोड़ा वॉकिंग कर ले। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी चहलकदमी ने मुझे इस उम्र तक पहुंचाया है। चहलकदमी जो है ना, वो रात में करनी चाहिए, बाहर नहीं तो घर में थोड़ी चहलकदमी कर ले। समझ में आई बात, यानी चहलकदमी का माना चाहे 40 कदम चल ले, ये चहलकदमी है, मशहूर है ऐसे बूढ़े लोगों में, चहलकदमी कर लो भाई, ताकि खाना हजम हो जाए, किसी किस्म की बीमारी न लगे। आम तौर पर लोग खाना खा के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेइंतहा बीमारी शुरू होती है। ये सारे हकीम लोगों की बातें हैं। एहतलाम सोने में गुसल की हाजत हो गई तो भी रोजा टूटता नहीं है, रोजा नहीं टूटेगा। एक मसला है बहुत जरूरी है ये भी, इसलिए कि मसाइल बयान करने में हम शर्म नहीं करते भाई, हम शर्म नहीं करते। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल किया, सारी औरतों के और मर्द भी तो बैठे, सवाल कर लिया पीछे से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? सवाल कर लिया। मजलिस के बाद हजरत आयशा गुस्से हो गई, तुझे शर्म नहीं आती, बड़े मजमे में भांडा फोड़ दिया तूने हमारा, भांडा फोड़ दिया, हमारे उस्ताद तर्जुमा कर रहे इसका, भांडा फोड़ दिया सबके सामने तुमने, हमने यानी रुस्वा कर दिया। उस मसले को पूछने से पहले उम्मे सलमा ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को हक बात बयान करने से शर्म नहीं आती है तो मैं भी शर्म नहीं करती हूँ, हक बात पूछ रही हूँ। देखो मसला बयान करने से पहले ये बात उम्मे सलमा ने कहा, फिर उसके बाद मसला पूछा। समझ में आई बात, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह कहते मुझे भी शर्म नहीं आती है, अल्लाह के हबीब ने भी ऐसे मसाइल बयान फरमाए हैं। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ कह रहा था, इस पर से बात निकल गया मैं जी। नहीं नहीं नहीं, मसला बयान कर रहा था मैं कुछ। अच्छा चलो, एहतलाम के और, हाँ वो मसला तुमको, ये तुम सब, मैं भी बुरा हो गया, तुम भी बुरे हो गए। मसला बयान कर रहा था, अगर लंबी रात है और किसी ने अपनी बीवी के साथ जिमा किया और जिमा करने के बाद ये सो गया, रमजान की बात कर रहा हूं, अब सहरी का टाइम भी खत्म हो गया, फजर का टाइम शुरू हो गया, तो अब ये नापाक है तो क्या इसका रोजा होगा? ये सवाल मुझे किसी ने किया था। मसला तो वाजे है, تم نے تو روزے کے حالت میں جمع کیا نہیں, جمع تو افطاری کے ٹائم اپنے کیا بولتے ہیں اپنے کس کے تہجد یعنی رات کے ٹائم میں کیا ہے, اور سحری اینڈ کے بعد آپ نے تو جمع کیا نہیں, تو پھر ایسی صورت میں تم غسل کر لو, مسئلہ حل ہو گیا, پھر نماز باقی ہے نماز پڑھ لو. ہاں روزے کی حالت میں اگر جمع کیا یا جان بوجھ کر کھانا کھایا یا جان بوجھ کر پانی پیا تو مسئلہ بہت مشکل ہے. پھر تو ایک صحابی آئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہا اللہ کے حبیب, جمع ہو گیا کیا کروں روزے کی حالت میں دوپہر میں. صحابی نے یہ تو وہ تو اللہ کے بندے تھے لیکن غالباً اس لیے ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے, اللہ نے وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائے جو ان کی شان کے مطابق تھے, ان کی شان کے مطابق, اور وہ اعمال صحابہ سے کروائے کیوں جو ان کی شان کے مطابق, تاکہ قیامت تک لوگوں کے سامنے مسائل کھل کر آ جائیں. ورنہ صحابیہ آتی ہے اور کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے, آج کوئی ہے ایسا کہنے والا؟ چھپاتے ہیں سب. صحابیہ آئی اور ایک صحابی کا بھی ذکر ہے مشکات میں, یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے, اور وہ صحابیہ تو کیا تھی پریگننٹ بھی تھی, کہا مجھ سے زنا ہو گیا, فرمایا جاؤ مسٹیک ہو گئی, نہیں فرمایا اللہ کے حبیب صحیح کہہ رہی ہوں زنا ہو گیا ہے, جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا, اور بچہ پیدا ہو گیا اللہ کے رسول تمہیں یاد ہے مجھے زنا ہو گیا تھا, آپ نے مجھے کہا تھا بچہ پیدا ہو گیا, فرمایا جب بچہ کھانا شروع کر دے دودھ پورا ہو جائے, چونکہ ماں اگر نہیں ہوگی تو دودھ کون پلائے گا بچے کو, جب دودھ پورا ہو جائے پھر آنا, بچہ جب کھانا شروع تب آنا. اور اس عورت کو سنسار کیا گیا, سنسار کا منع کرتا ہے نا, جس کو رجم کہتے ہیں پیلٹنگ کہتے ہیں, یعنی ایک کھڈا کھودا جاتا ہے اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, چاروں طرف سے لوگ پتھر مار کر ان کو ختم کر دیے جاتے ہیں, جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. ہاں اور فرمایا اللہ پاک نے اس کام پر تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے, اگر تمہیں رحم آتا ہے تو پھر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ سورہ نور کی پہلے سپار پہلے رکوع کی آیت ہے, دیکھ لو. اسی لیے وہاں جدہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد سنسار کرتے ہیں, جمعہ کی نماز کے بعد قتل کرتے ہیں سب, پورے مجمع کے سامنے, اس مسجد کے سامنے ہی میں خود دیکھنے کے لیے گیا تھا, بس پورے سارے لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں, پھر اس طریقے سے جلاد آتا ہے اور ایسے سر کو اٹھاتے ہیں, آنکھ پر پٹا باندھا ہے آ گیا کچھ مشین کی شکل میں اڑا دیا. یہ اسلامک اگر کنٹری ہے تو, اسلامک حکومت ہے تو اسلامک قانون پر عمل کرنے کا یہ راستہ ہے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کیوں, ایک دو پر ایسا کیا جائے گا تو دوسرے سارے لوگ یہ کام نہیں کریں گے, ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا, اب تو نہیں کرتے اس لیے کتنا عام ہو جاتا ہے. فرمایا اس اللہ کے نبی نے اس عورت کو کچھ نہ کہو, اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, دیکھو زنا کرنے کے بعد ایسی توبہ کی ہے, اگر میں اللہ کا نبی اس کو تقسیم کروں تو پورے مدینے والے کی مغفرت ہو جائے, ایسی توبہ کی, پھر بھی سنسار کیا گیا. اب اسلامک حکومت میں کوئی زنا کرے تو کیا کریں گے, تو مسئلے کو اس طرح واضح کیا گیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان تھی, ان کی شان کے مطابق پانچ نماز ایسی گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں, اس پانچ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسٹیک کروائی گئی, بجائے چار رکعت کے تین پڑی, بجائے جی چار کے پانچ پڑی, اور بجائے چار کے دو پڑی, اور دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے, یہ بھول کروائی گئی تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو پتا چلے کہ تمہاری نماز میں اگر مسٹیک ہو واجب چھٹ جائے تو کس طرح نماز پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, ان کی شان کے مطابق. تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل سکھائے گئے ہیں, سکھائے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ دیا, تو اگر کوئی آدمی, ہاں تو وہ صحابی آئے وہ سنا رہا تھا, فرمایا اللہ کے رسول زنا ہو گیا, فرمایا 60 روزے غلام کو آزاد کرو پہلے جاؤ, قرآن میں ہے نا, پہلے غلام کو, بھوکا میں کھود ہوں غلام کہاں سے لاؤں, मैं खुद भूखा हूं, लाओ गुलाम किधर से? और तुम कह रहे हैं गुलाम आजाद करो, हो जाओ 60 रोजा रखो, जा क्या कहा 7 रोजे रखो। अरे अल्लाह के रसूल, 1 महीना रोजे में मेरा ये मसला हो गया, 2 महीने में मसला क्या होगा, पूरी जिंदगी रोजे में गुजर जाएगी मेरी। फरमाते 1 महीने रोजे में सबर ना कर सका, 2 महीने का रोजा आप कह रहे हैं, अच्छा अच्छा चल बैठ इधर, ऐसा करो जाओ साहब मिस्किन को खाना खिला दो। अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी बच्चों के लिए खाना घर में नहीं है, तो तुम मुझे कह रहे सांस मिस्किन को, मैं खुद मुझे चाहिए खाना, तो हमारे घर में भूखे हैं। बैठ इधर, चल इधर बैठो। अभी बैठे, थोड़ी देर के बाद एक साहब भी आए, कुछ लेकर आ गए, फरमाया जाओ इसको तकसीम कर, मुझे जरूरत है तकसीम करने की बात करते हैं, जाओ जाओ घर ले जाओ। ये सिर्फ उनके साथ खास था, ये सिर्फ उनके साथ खास था, लेकिन बाद में अल्लाह ने फिर उतार दिया, बयान कर दिया, अगर तुम लोग कयामत तक ये काम करोगे रोजे की हालत में। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं, खाना खा लिया या पानी पी लिया जानबूझकर, या जिमा कर लिया, या जिमा कर लिया, अल्लाह बचाए जिना से कर लिया, ऐसे सूरत में सबसे पहले गुलाम आजाद करना। लेकिन आजकल तो गुलाम का जमाना है नहीं, ये तरतीब वाजिब है इमाम साहब के यहाँ, तरतीब वाजिब है। आप कहें या मैं 60 मिस्किन को खाना नहीं चलेगा, उससे पहले 7 रोजे हैं, तरतीब है। हाँ अगर तुम बीमार हैं और 7 रोजे नहीं रख सकते तो फिर नंबर 3 पर जाना है, वरना नंबर 2 वाला काम पहले करना है। 60 रोजे रखो और उसमें भी 1 रोजा इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर 1 रोजा भूल गए तो फिर तुम्हें दोबारा शुरू करना पड़ेगा 60। मिसाल के तौर पर आपने 59 रख लिए और 60 वा छूट गया, फिर से शुरू करो 60। ये मसला है, तो रोजे की हालत में ये काम कभी ना करियो, वरना मसला बहुत मुश्किल हो जाएगा, बीबी डंडे भी मारेगी आपको, ये क्या काम किया तुमने। अच्छा ये बात हो गई, अगर पेट के अंदर में इंसुलिन जो ये जो लेते हैं ना, किसका, डायबिटीज का, उससे रोजा नहीं टूटता है, उससे रोजा नहीं टूटता है। हाँ वो इंजेक्शन के बारे में उलमा फरमाते हैं जो बहुत लंबा होता है, जिसको कुत्ते ने काट लिया हो, तो उसको रोजाना नाफ की चारों तरफ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहां तो पता नहीं है लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या है, नाफ की चारों तरफ। उसके अंदर में भी अगर कोई दवा उसके पेट में पहुंची हो, मसला वही होगा, पेट के अंदर में ना पहुंचे, अगर ऊपर लगा दिया है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी मैं खुद तहकीक करने वाला हूं, 2-3 डॉक्टरों को मैं पूछूंगा इंशाल्लाह, कि ये जो डायबिटीज में जो इंसुलिन लिया जाता है, इससे क्या उसके पेट के अंदर, डॉक्टर सब कुछ ऐसा याद है, पेट के अंदर में जाता है या सिर्फ ऊपर चमड़ी के ऊपर इंजेक्शन होता है, ऊपर रहता है ना, अंदर में नहीं जाता। तो कोई भी मसला याद रखो, अगर कोई भी चीज पेट के अंदर में चली जाए या फिर दिमाग से पेट के अंदर से पहुंचाई जाए तो उसे रोजा टूट जाएगा, वरना रोजा नहीं। आई बात समझ के अंदर, जैसे वो दूसरे इंजेक्शन का मसला है इसके, ये बात याद रखो। एक होता है अनीमा, अनीमा कहते हैं पेट की सफाई के लिए पीछे के रास्ते से कोई दवा चढ़ाई जाती है पेट की सफाई के लिए, समझना ही बात, वो ऑपरेशन से कुछ पहले उससे पहले दवाई दे देते हैं कि ताकि पेट साफ हो जाए, तो उससे जो दवा चढ़ाई जाती है उससे रोजा टूट जाएगा, उससे क्या है रोजा टूट जाएगा। बवासीर की 2 किस्में हैं, एक बवासीर बाहर होते हैं और एक बवासीर अंदर होते हैं, अंदर में वो अंदर चले जाते हैं, और वो बवासीर जो बाहर होते हैं, बवासीर की अंदरूनी मसों पर अगर मरहम लगाई या दवा लगाने से रोजा टूट जाएगा, उसे क्या हो जाएगा रोजा टूट जाएगा, मगर जो बाहर रहते हैं उन पर लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। जी मर्द की पेशाब की नाली से भी अगर कोई दवा टपकाई गई, अंदर पहुंचाई गई और वो मसाने तक न पहुंचे तो रोजा नहीं टूटेगा, अगर मसाने तक पहुंच गई अंदर में जहां पर पेशाब रहता है, पेशाब जो है वहां, तो ऐसी सूरत में उससे रोजा टूट जाता है। जी और कोई सवाल किसी का?
कोई
जी
कोई पेश करें,
अभी ये भी एक सवाल है कि आजकल ये कोविड टेस्ट देते हैं कि तुम्हारे घर में चेक कर लेना, तो कह रहे हैं कि क्या मुंह में चेक करने से, नाक में चेक करने से रोजा टूटता है? नहीं, उसे को लेना जरा, वो पेट में थोड़ा जाता है, वो तो ऐसे चेक करके दे दिया जाता है, जैसे हम पानी डालते हैं कुल्ली में गरगरा में, ऐसा हो गया जी। मसले सारे मैं समझता हूँ, अक्सर मसाइल तुम्हारे सामने आ चुके हैं, अक्सर मसाइल जो हमारे रमज़ान के हिसाब से ज़रूरी मसाइल थे वो आ चुके हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में, नमाज के अलग है, फिर हज के अलग है, फिर ज़कात के और मसले अलग है, बहुत सारे मसाइल, जो मेन जो मसाइल है, फिर ये दूसरी इबादतों के मसाइल है, कब्रिस्तान के मसाइल, मैयत के मसाइल, कफन दफन के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं। इंशाल्लाह आपके शौक के ऊपर जब आप कहेंगे तो बयान करेंगे, अभी इतना ठीक है, ठीक है, फिर कल से हमारी तफसीर शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? और कोई तकाजा है? वीक में एक
मसाइल।
अच्छा, हाँ जी
भाई, यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में अक्सर वो रोजों में कहते हैं कि सर में दर्द है,
हाँ,
तो वो डॉक्टर उसको टीका लगा देते हैं, भाई अब ठीक हो जाएगा।
ठीक है,
ठीक है,
कोई हर्ज नहीं, वो इंजेक्शन में सब आ गया, वही टिक्का और इंजेक्शन, कोई हर्ज नहीं। नाक से, मुंह से कोई दवा दिमाग में या पेट में पहुंचाने से रोज़ा टूट जाता है, उसके अलावा बदन में कहीं भी ग्लूकोज ड्रिप्स, इंजेक्शन वगैरह, वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिक वली अज़ीम सुल्तानिक। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिंदगियां गुजर गई, बहुत सारे मसाइल में हमने गलती की है, तो अपने फजल से माफ़ फरमा, अपने फजल से माफ़ फरमा, और जो मसाइल हमने सीखे हैं अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमें दीन सीखने की तौफीक नसीब फरमा, दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस मजलिस की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी आलो औलाद के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अकारीब और पूरे मजमे के और पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस दुनिया में फैली हुई बलाओं को ख़त्म फरमा, दुनिया में फैली हुई वबा को ख़त्म फरमा, उम्मत के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा, अल्लाह हमें सेहत कामिला नसीब फरमा, सेहत कामिला नसीब फरमा। इस मजमे में बहुत सारे बूढ़े भी है, इल्लाहुल आलमीन, जिनको दर्द की बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ वाला है, कोई प्रेशर वाला, अल्लाह ताला जिस किस्म की बीमारी में जो भी मुबतला हो, अल्लाह मुकम्मल शिफा नसीब फरमा, मुकम्मल आफियत नसीब फरमा। घरों पर बैठकर सुनने वाली पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, उनका सुनना भी कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बीमार हो, जहाँ कहीं घरों में, हॉस्पिटल में, इस मजमे में, जहाँ कहीं, अल्लाह सब को शिफाए कुल्लिया, आजिला, दाइमा, मुस्तमिरा नसीब फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफियत नसीब फरमा, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह हम सबको ईमान पर कायम दाइम फरमा। या अल्लाह हमारी बिनाई की भी मरते दम तक हिफाजत फरमा, हमारी कान की सुनवाई की मरते दम तक हिफाजत फरमा, ज़बान की गोयाई की मरते दम तक हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दिल की, अल्लाह दिल की धड़कनों की, इलाहुल आलमीन, मरते दम तक हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदन की हर किस्म की बीमारियों से, छोटी हो या बड़ी हो, अल्लाह तेरे नबी ने दुआ फरमाई, मिन जमील सईल असकाम, सारी बीमारियों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह कैंसर की, टीबी की, मुहलिक बीमारी से हमारी सब की हिफाजत फरमा। या अरहमुर राहिमीन, या अकरमुल अकरमीन, ईमान पर कायम दायम फरमा। सब्बितना अल ईमान व अमितना अल ईमान, और ईमान पर मौत भी नसीब फरमा। वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तकीन मअल ईमान, और क़यामत के दिन नेक और सालिहीन के साथ हमारा हशर फरमा। बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा, और अर्श के साये में जगह नसीब फरमा, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौद कौसर का पानी नसीब फरमा, हौद कौसर का पानी नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। رمضان کی برکت والے مہینے میں ہمیں موت بھی نصیب فرما، رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والی وسلم اجمعین برحمۃ